गांधी गांधी गांधी
गांधी। यहां से राइट लेंगे तो सीधा शादी के पंडाल में पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, राइट का रास्ता लंबा होगा, मैं कहती हूँ यू टर्न ले लो। क्यों सर, इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स आप पति पत्नी में अक्सर होते हैं ना? लेकिन मजे की बात यह होती है कि दोनों की मंजिल एक होती है, सिर्फ रास्ते का चॉइस डिफर करता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो दोनों दुश्मन हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा था मेरे बापू की जिंदगी में भी। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब दोनों दलितों का उद्धार चाहते थे, लेकिन दोनों के तरीके एक दूसरे से पीठ टिका कर खड़े थे।
आज हिंदू भारत में सब मुझसे नफरत करते हैं, मुझे गद्दार कहते हैं, मुझे हिंदुओं का दुश्मन कहा जाता है। लोग कहते हैं कि मैंने हिंदू धर्म को बर्बाद किया है और मैं इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन हूं। पर मैं यकीन के साथ कहता हूं कि कुछ दिनों के बाद जब सब शांत हो जाएगा और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग्स को हमारे भविष्य के इतिहासकारों द्वारा रिव्यू किया जाएगा, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां देश के प्रति मेरे इस काम को जरूर सराहेंगी। मुझे इस बात की तसल्ली है कि दलित वर्ग को मेरे काम पे पूरा विश्वास है और जिस मकसद के लिए मैं खड़ा हुआ हूं उसे पाने में वो मेरा पूरा साथ देंगे। मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी कि जिन लोगों के बीच मैं पैदा हुआ, पला बढ़ा, उन्हीं के लिए काम करते हुए मैं अपनी जान दूं। मेरी निंदक मेरी चाहे जितनी भी आलोचना करे, मैं अपने मकसद को पाके रहूंगा।
आम्बेडकर जी अपने विचारों को लेकर काफी क्लियर थे। उन्हें मालूम था कि उन्हें दलित समाज को ऊपर उठाना है, एक रिस्पेक्टेबल पोजिशन दिलानी है, लेकिन इसके लिए समाज से अलग होने के रास्ते से शायद मेरे बापू सहमत नहीं थे।
मुझे किसी भी तरह के राजनैतिक लाभ में कोई मोह नहीं। ब्रिटिश सरकार और देश के दलित नेता यही चाहते हैं कि जैसे मुस्लिम और सिखों को अलग से राजनैतिक अधिकार दिए गए हैं, वैसे ही अधिकार दलितों को हिंदुओं से अलग करके दिए जाए। मैं इस बात का पुरजोर विरोध करता हूँ। अगर ऐसा होता है तो हिंदू और दलित समाज में जो थोड़ी बहुत एकता हुई है वो भी खत्म हो जाएगी। फिर तो आप हमारी आज़ादी का ख्वाब ही भूल जाइए।
और एक दिन वो पल भी आया जब मेरे बापू और अम्बेडकर जी पहली बार मिले।
नमस्कार।
आइए आइए, तो आप हैं अंबेडकर, बैठिए। सुना है आप मुझसे और मेरी पार्टी से बड़े नाराज हैं।
जी बापू, वो
अंबेडकर जानते हो, तुम्हारे जन्म से भी पहले हम दलितों की समस्या को लेकर चिंतित थे और आज भी हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं उनके उद्धार की। मैं और मेरी पार्टी ने 20 लाख रुपए भी दिए हैं सिर्फ दलित समाज के कल्याण के लिए।
माफ करे बापूजी, लेकिन पैसों से कल्याण नहीं होता है, सोच को बदलना पड़ता है। और जब तक आपकी पार्टी दलितों के लिए अपनी सोच नहीं बदलेगी, देश के पैसे ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे।
तो आप क्या चाहते हैं?
मुझे आपके विचार जानने हैं। सुना है ब्रिटिश गवर्नमेंट एक नया प्रस्ताव ला रही है जिसमें हम दलितों को अलग से राजनैतिक अधिकार दिए जाएंगे, जैसे मुस्लिम और सिखों को है।
ये तो बहुत ही बुरा प्रस्ताव है, इससे हिंदू और दलितों में दरार और बढ़ जाएगी। जो थोड़ा बहुत काम इस दिशा में हुआ है वो सब बेकार हो जाएगा।
महात्मा जी, हम तो चाहते हैं कि हमें यह अधिकार मिले, वरना हमारी हालत में कोई सुधार नहीं होने वाला है। और अगर हमारी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो हम देश के सुधार के प्रति हमारा योगदान नहीं दे पाएंगे। शुक्रिया, मुझे बस यही कहना था।
बापू ने अंबेडकर जी का गुस्सा और बातें ध्यान से सुनी और बहुत विचार भी किया, लेकिन मेरे बापू राजनीतिक फायदे से ज्यादा धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखते थे। और शायद बापू को मालूम था कि अगर आजादी चाहिए तो साथ साथ ही रहना होगा, लाइक अ जॉइंट फैमिली। कुछ हफ्तों पहले जो इंसान लंदन के शाही महल में मेहमान बनकर गया था, आज वो अपने ही देश की जेल में मेहमान बना हुआ था। मुझे याद है जेल जाते वक्त मेरे बापू ने कहा भी था,
ब्रिटिश सरकार ने मेरे लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए, पर अब जल्द ही लोहे का दरवाजा खुलने वाला है।
खैर, उन्हें मालूम हुआ कि ब्रिटिश सरकार नया प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है जिसमें हरिजनों को हिंदू से अलग कर दिया जाएगा और राजनीतिक अधिकार दिए जाएंगे। जैसे ही बापू को ये बात मालूम हुई, उन्होंने सर सैमुअल होर को लेटर लिखा।
रिस्पेक्टेड सर, दलित जातियों के लिए अलग से चुनाव कराना उनके लिए और हिंदुओं के लिए हानिकारक रहेगा। मुझे मालूम है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन इससे मैं और आप धर्म के पहलू को अनदेखा नहीं कर सकते। इसलिए अगर सरकार अछूतों के लिए अलग से निर्वाचन प्रक्रिया की अनुमति देती है तो मुझे आमरण अनशन उपवास करना पड़ेगा।
जब मैंने कोई कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। इस डायलॉग का इंस्पिरेशन शायद मेरे बापू से ही मिला होगा। जिस बात को लेकर बापू बिल्कुल श्योर होते थे, उस पर तो शायद वो अपने भगवान की भी नहीं सुनते थे। फिर ये तो सिर्फ अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने सोचा कि बापू तो अभी जेल में है और जेल में उनके उपवास का क्या असर होगा। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये प्रस्ताव पारित हुआ, बापू ने अपना उपवास शुरू करने का निश्चय कर लिया।
रिस्पेक्टेड मिस्टर मैकडॉनल्ड, आपके निर्णय का मुझे अपने प्राणों की बाजी लगाकर विरोध करना होगा। यही इसका एकमात्र तरीका है। मैं सोडा और नमक के साथ या फिर खाली पानी के सिवा और कुछ नहीं खाऊंगा, और ये अनशन 20 सितंबर से शुरू हो जाएगा।
सितंबर 8 को भेजे गए इस लेटर को देखकर मैकडॉनल्ड के तो होश ही उड़ गए और उन्होंने सारी दलील के साथ सरकार के डिसीशन का समर्थन किया। लेकिन मेरे बापू ने जवाब में कहा,
मुझे आपसे किसी तरह की बहस में नहीं पड़ना। मेरे लिए तो ये मामला सिर्फ धार्मिक है। आप जरा सोचिए उन हिंदू भाइयों का क्या जो इतने सालों से अपने दलित भाइयों के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें इस समाज में एक समान मंच पर लाने के लिए लड़ रहे हैं, उनका क्या?
इसके बाद लंदन से कोई लेटर नहीं आया और 20 सितंबर आते आते पूरे देश में यह खबर फैल चुकी थी। दलित और हिंदू नेताओं में मीटिंग शुरू हो गई। बापू को मनाने के लिए हर किसी ने भरसक प्रयास किया, लेकिन सब बेकार साबित हुए। दोपहर के खाने के बाद बापू का उपवास शुरू हुआ। बापू की उम्र और हालत देखकर हर किसी ने मान लिया कि शायद ये बापू का अंतिम उपवास होगा, लेकिन मुझे विश्वास था कि कुछ न कुछ हल जरूर निकलेगा। कांग्रेस के सारे बड़े नेता मिलकर नया प्रस्ताव बनाने में जुट गए और 5 दिन बाद डॉक्टर अंबेडकर और हिंदू नेताओं के बीच तय हुआ कि दलित जातियों की 147 सीटें सुरक्षित की जाएं। बात का दौर चलता रहा। कभी मेरे बापू किसी बात पर अड़ जाते तो कभी अंबेडकर जी, और फाइनली 5 दिन बाद शाम को जाकर फेमस पूना पैक्ट साइन हुआ। और उसके बाद अंबेडकर जी ने कहा,
जब मैं महात्मा गांधी से मिला तो मुझे आश्चर्य हुआ कि उनके और मेरे बीच में परस्पर मेल खाने वाली कितनी अधिक चीजें थीं। वास्तव में जब कोई विवाद उनके सामने गया तो मैं यह देखकर हैरान रह गया कि जो इंसान मेरे विचारों से इतना मतभेद रखता था वो तुरंत मेरी हिमायत करने लगा, ना कि किसी दूसरे पक्ष की। मैं महात्मा जी का बहुत बड़ा कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझे ऐसी स्थिति से बचा लिया जो कि बहुत कठिन हो सकती थी।
कई कहते हैं मेरे बापू ने उपवास रखकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। एक बेटे की रक्षा के लिए उसका पिता कुछ भी कर सकता है, ये शायद आप और आपके पिताजी से अच्छा कौन जानता होगा। मेरे बापू अगर इस अनशन में जान गंवा देते तो शायद उसके लिए हर कोई जिम्मेदार होता। समाज में हरिजनों को कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन मेरे बापू के एक हफ्ते के उपवास की वजह से हिंदू कट्टरता के गढ़ माने जाने वाले कलकत्ता के कालीघाट मंदिर और काशा मंदिर हरिजनों के लिए खोल दिए गए। दिल्ली में भी हिंदू और हरिजनों में भाईचारे का प्रदर्शन हुआ। बंबई के उन मंदिरों में जिसमें हरिजनों ने कभी पांव तक नहीं रखा था, वो सब बापू के उपवास के कारण हमेशा हमेशा के लिए हरिजनों के लिए खोल दिए गए। और आज जब मैं किसी मंदिर में सारे समाज को एक साथ पूजा करते हुए देखता हूं तो अपने बापू को थैंक यू कहना नहीं भूलता।